शरीर और मन के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में,
शरीर और
आत्मा एक चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो आत्मा जब माया में बद्ध हो जाता है तो उससे एक विकार जैसा होता है। विकार कैसा? जैसे शादी पर आपकी नहीं थी, इनको पति मानती थी नहीं मानती थी ना? अच्छा, अब इसके बाद में शादी हो गई तो इनको पति माना। मान लिया कि किसी का डाइवोर्स हो गया, वो अब अपने पति को पति मानेगी? ये अभिमान है ना। तो बीच में कुछ ऐसा ही जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के साथ ही साथ में उसको मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का एक और कवरिंग मिलता है। वो अभी जो कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, वो मन सोच रहा है।
मन बड़ा खुश है।
हाँ, वही 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 मन ही कर रहा है। अभी मन जितना फंक्शन है उसी का है, किंतु ये बना है शरीर से। शरीर से हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, धरते हैं, सब का मूल वही मन है।
मन ही कर रहा है,
मन ही सब। किंतु
मन ही कह रहा है।
एक और सुनो, एक और बात सुनो। मैंने कहा जी बेटी तू मेरी शिष्या है तो हाँ, तुम आज से तुम्हारी रुचि नहीं होने पर भी 25,000 नाम करना 16 बार का। अच्छा, ये जो तुम नाम कर रही है, ये नाम तुम अपने मन की बात मान रही है न ये क्या चीज़ है? ये तो इसलिए तुम्हारे मन की बात नहीं है न। भगवान का भजन करो, गुरु जी ने कहा ना, मन तो कभी नहीं कहा। इसलिए संसारिक चीजें वाले जितने मन की बातें हैं, मैं बहुत सुखी, हमारा बेटा हो गया, ये हुआ, हमारा बेटा ये बात कर लिया, हमारे बेटे की शादी हो गई, ये सब मन की क्रिया है। और उसमें जब हरिनाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और उसमें बड़ा आनंद आता है, ये तुम्हारे मन की बात नहीं है। उस कथा जो भगवान की भक्ति है उसकी शक्ति से ये हो रहा है। वो भक्ति की क्रिया है, वो आत्मा प्रक्रिया हो रही है। इसलिए अभी मन की ऐसा मालूम होता है, जो मुझे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वो सभी मन की क्रिया है। इसलिए हरिनाम करते समय जब ऐसा नित्य करते हैं, आनंद होता है, समझते हैं कि ये भी मन की क्रिया है, किंतु वो मन की क्रिया नहीं। आत्मसमर्पण और आत्मनिवेदन एक चीज है।
आत्मसमर्पण और समर्पण,
वो समर्पण अभी शरणागत वो कुछ भी नहीं है। समर्पण जो है बिना गुरु के तत्व ज्ञान के समर्पण नहीं होता। अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया, वहां तक ठीक है। समर्पण माने देना। मैंने आपको आत्मसमर्पण किया कब? जब हिटलर किसी को हरा दिया तो उसने आत्मसमर्पण, ये सब साधारण है। आप कहीं हाथ ऐसा उठा दिया और बंदूक न मारे, ये आत्मसमर्पण, ये सांसारिक चीज है, ये शारीरिक और मन की बात है। और वो समर्पण है ना,
जैसे हाँ,
सुन करके हाथ उठा दिया, ये समर्पण, ये लौकिक है, उसका देखा देखी बनाया है, वो असल नहीं। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए अमेरिका इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहाँ घूम कर कभी आ रहा, तो तुम आना जब आएंगे तुम्हारी कथा सुन।
कर्म ज्ञान मोक्ष इत्यादि की बात की और कहीं पर तुमने गणेश जी को ही भगवान बता दिया, कहीं पर दुर्गा जी को भगवान बोल दिया, कहीं पर शिव जी को भगवान बता दिया। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग देवताओं और अलग अलग उपासनाओं का वर्णन कर तुमने जीवों को संशय में डाल दिया। वे ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में भगवान है कौन और उस भगवान को हम कैसे पाए। तब नारद जी ने बताया, क्या तुमने वर्णन किया कि कृष्ण ही भगवान है, स्वयं श्याम सुंदर राजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वे ही भगवान है, यशोदा नंदन वे भगवान है और वे ब्रज में इतनी मधुर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ कि उनके चित्त और मन प्राण को आकर्षित किया हुआ है और स्वयं उनके प्रेम से वशीभूत है, स्वयं सृष्टि के रचयिता होते हुए भी परम ब्रह्म होते हुए भी जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वे स्वयं यशोदा जी के छोटे से बालक के रूप में लीलाएं करते हैं और यशोदा जी प्रेम से उनको अपना स्तनपान कराती हैं और कभी डांटने के लिए उनके कानों को उड़ेल देती हैं और वे रोते हैं। ऐसी सब लीलाओं को तुमने वर्णन नहीं किया, तुमने ब्रज की गोपियों की महिमा वर्णन नहीं की जिनके अथाह प्रेम में स्वयं श्याम सुंदर पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। इस प्रकार ब्रज की महिमा और इस प्रकार भगवान की जो माधुर्य लीला है वो तुमने वर्णन नहीं की जिसके कारण एक असंतुष्ट हो। स्वयं ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं, एते चांस कला पुत्रो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी हम भगवत अवतार देखते हैं, नारायण विष्णु राम नृसिंह इत्यादि जितने भी भगवत अवतार हैं, उन सब के मूल हैं कृष्ण। कला भक्तो कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये सब उनकी कला है एवं अवतार है। तो जब तक हम पूर्ण पुरुष स्वयं गोविंद भगवान है उनके बारे में वर्णन नहीं करेंगे, उनको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेंगे, उनकी प्रेम स्थिति के लिए चेष्टा युक्त नहीं होंगे, तब हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तब उनको यह सब बातें बतलाकर और उनको बोला कि तुम भक्ति योग में अपने चित्त को समाधिस्थ कर इन सब चीजों इन सब तत्वों का अनुभव करो। तब वेदव्यास जी ने नारद जी के बताए आदेशों का पालन कर अपने चित्त को भक्ति योग द्वारा समाधि में स्थित किया एवं भगवान की समस्त लीलाओं को और उन्होंने देखा कि जितने भी जीव हैं किस प्रकार से इस माया द्वारा बद्ध होकर इस संसार में यातनाएं भुगत रहे हैं और स्वयं माया देवी सर झुकाकर भगवान के पीछे खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता जीवों को इस प्रकार से दंड देना, किंतु यह भी जीवों के कल्याण के लिए ही है ताकि वो समझें वे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वे भगवान के अंश हैं और भगवान को भूलने के कारण ही इस संसार में हम इतने कष्टों को भूल रहे हैं। इस प्रकार से तब वेदव्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा पूर्ण समाधि की स्थिति में जब उस परम पुरुष के दर्शन किए और इन समस्त ब्रज लीलाओं को दर्शन किया तब श्रीमद् भागवत की अवतारणा की और इस प्रकार पंचम पुरुषार्थ अर्थात कृष्ण प्रेम ब्रज प्रेम की बात बताकर उन्होंने बहुत सुंदर रूप से हमें ये मार्ग दिखाया कि किस प्रकार हम उस ब्रज के अमूल्य प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसी प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण कलिकाल में आज से 500 वर्ष पूर्व श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं बंगाल में मायापुर में, और वहाँ उन्होंने बहुत ही सरल सहज रूप से नाम प्रचार के द्वारा इस प्रेम को जगत के जीवों में वितरित किया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए और भी किसी साधन को करना, ज्ञान की चेष्टा करना अथवा कर्म की चेष्टा करना असंभव है पूर्ण रूप में। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत कष्ट है और ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये सब कम अधिक से अधिक शरीर अथवा मन के स्तर तक किए जा सकते हैं, किंतु आत्मा तो फिर भी छूटी रह गई। आत्मा की संतुष्टि के लिए केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर संतुष्ट हो सकते हैं और सुख के साथ रह सकते हैं। इस प्रकार महाराज जी ने वहां पर भक्तों को नारद जी और वेदव्यास जी के संवाद के द्वारा भागवत के प्रतिपाद्य विषय अर्थात ब्रज प्रेम की बात बतलाई, और जितने भी भक्त लोग थे वे स्वयं आनंद में डूब गए। वहां पर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति भी आए हुए थे जो कि इस वक्त संसार में बहुत नाम कमा रहे हैं। उनका नाम है क्रिस्टियन मिल्स। वे पाश्चात्य संगीत के एक बहुत बड़े गायक हैं और इस वक्त और नवीन प्रभु जी बता रहे हैं कि वे एमटीवी के प्रोड्यूसर भी हैं। इस वक्त विश्व में बहुत विख्यात हैं और वहां तो इंग्लैंड यूरोप या अमेरिका में जहां भी गए तो देखा कि उनका कीर्तन संजगा बज रहा है। एक मेरे को घटना संस्मरण हो रही है कि एक भक्त जो कि महाराज जी से पिछले वर्ष हरिनाम लिए हैं जगत मोहन प्रभु, वे बता रहे थे कि उनका एक भाई है और जगत मोहन जी लगभग पिछले 10 वर्षों से भक्तों के संग में हैं और वो 10 वर्षों से ही चेष्टा कर रहे हैं अपने भाई को बोलने की कि तो एक बार चलो मेरे साथ मंदिर में और भक्तों का संग करो, किंतु वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बाहरी जितनी भी शारीरिक इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं उनमें वो इतने रूप में मग्न है कि उसको इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। किंतु उसने बताया कि थोड़े समय पहले जब वो एक दिन अचानक सुबह सब काम करके घर में लौट रहा था शाम को, तो घर में उसने सुना उसका भाई बोल रहा है गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद। तो ये आवाज रह गया, अरे ये गोविंद जय जय गोपाल जय जय कहाँ से करने लग गया। तब उसने बताया कि क्रिस्टियन मिल्स उसका जो रिकॉर्ड इस पर संसार में सबसे नंबर एक चल रहा है उसके रिकॉर्ड से प्रभावित होकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय कर रहा। इस प्रकार वे भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने भी महाराज जी के इच्छा महाराज जी को आह्लादित करने के लिए सब क्षेत्रों को किया और स्वस्थ भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद हम लोग वहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हुए और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हम लोग 2 दिन रुके और वहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जिसे डेजर्ट कहते हैं और भक्तों का वह एक गांव है। बहुत वर्षों से लगभग 15-20 वर्षों से भक्त लोग वहाँ पर धीरे धीरे एकत्र हुए हैं और उस माहौल को इतना भक्तिमय बना दिया है कि सब कुछ खुद ही करते हैं। फल फूल खाने की वस्तुएं इत्यादि सब उन्होंने वहीं पर बहुत सुंदर रूप से गांव बना लिया भक्तों का और वातावरण तो इतना सुंदर है लगता है जैसे वृंदावन हो। वो भी इसलिए क्योंकि भक्तों ने इस गांव को नाम दे दिया है न्यू ब्रज। किंतु न्यू ब्रज में एक कमी थी, वो यह है कि न्यू ब्रज तो नाम था किंतु उसमें प्राण नहीं थे। जब महाराज जी वहां पहुंचे तो महाराज जी के पहुंचने से ही वास्तव में वो स्थान वृंदावनमय हो गया और महाराज जी ने उनको एक बहुत सुंदर भेंट दी वहां पर और वो भेंट थी गिरिराज जी की। महाराज जी ने वहां पर बहुत सुंदर रूप में अन्नकूट महोत्सव किया, जैसे हम ब्रज में गिरिराज जी में अन्नकूट महोत्सव करते हैं वैसे महाराज जी ने वहां पर एक बहुत सुंदर पहाड़ है लगभग 15 फीट ऊंचा और उसके आसपास बहुत सुंदर वृक्ष छोटे छोटे पौधे और एकदम ऐसा लगता है जैसे हम गिरिराज जी में ही बैठे हों। तो वहां महाराज जी ने सबको उत्साहित करके बहुत सुंदर रूप में अन्नकूट महोत्सव किया और भक्तों में इतना उत्साह था कि उन्होंने लगभग 150 प्रकार के व्यंजन भोग नैवेद्य गिरिराज जी को अर्पण किए। वहां पर केवल बड़े लोग ही नहीं, वहां पर बच्चे 7 वर्ष 8 वर्ष की उम्र से लेकर के 15-20 वर्ष की उम्र के लड़के लड़कियां इतने महाराज जी से प्रभावित हुए कि महाराज जी जो कथा बोलते थे उस कथा को वो अगले दिन या दो दिन के अंदर ही ड्रामा के रूप में प्रस्तुत कर देते थे और महाराज जी को दिखाते थे और सभी बहुत लोग देख करके बड़े उत्साहित होते थे। और जब महाराज जी वहां से निकले, वहां से चले हम लोग, तो सभी की आंखों में आंसू, सभी रो रहे हैं और बच्चे तो इतना रो रहे हैं कि महाराज जी आप हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, हमें भी साथ में ले जाओ। इस प्रकार से ब्रज में, न्यू ब्रज में महाराज जी ने गिरिराज जी की स्थापना की। अन्नकूट महोत्सव भी वहां पर मनाया गया और वहां पर महाराज जी ने दो ग्रंथों को आधार रखकर बहुत सुंदर कथाएं बताई, एक श्रीमद् भागवत और दूसरा उपदेशामृत। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित उपदेशामृत के 11 श्लोक महाराज ने एक एक करके इतना सुंदर रूप से वर्णन किया कि वे सब लोग चकित रह गए। वहां पर अधिकांश लोग स्वामी जी भक्तिविदांत स्वामी महाराज जी से संबंधित हैं और वे उनकी पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं, किंतु जब महाराज जी ने उपदेशामृत ग्रंथ को पढ़ा और स्वामी महाराज जी की टीकाओं को पढ़ करके सुनाया और उस टीकाओं के वास्तविक अर्थ जब बताए तो सभी चकित रह गए। अरे हम तो इतने समय से पढ़ते हैं तो हमें तो ये बातें कभी पता ही नहीं चली और आप इतने इतने तत्व इसमें से निकाल रहे हैं। तब महाराज जी ने बताया कि जब तक हम किसी तत्वज्ञ एवं रसिक संत महापुरुषों का संग नहीं करेंगे तब अपने आप पुस्तक पढ़ने से भी हम कुछ लाभ नहीं कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे शुद्ध रसिक संतों का संग करें जो कि स्वयं अपने अंदर पूर्ण रूप से उन तत्वों को समाहित किए हुए हैं और अनुभव युक्त है। उनके अनुभव्य करने से हमें ये चीजें तुरंत सहज रूप में प्राप्त हो सकती है। वहां से हम लोग कोस्टरिका पहुंचे, दक्षिण अमेरिका में कोस्टरिका, जहां पर स्पेनिश भाषा का प्रयोग होता है। तो अमेरिका के भक्त लोग चिंता कर रहे थे महाराज जी स्पेनिश भाषा कैसे बोलेंगे, किंतु महाराज जी तो चाहे संस्कृत हो, पंजाबी हो या कोई भी भाषा हो, महाराज जी के हृदय का जो प्रेम है उसके कारण सभी लोग महाराज जी के भावों को समझ लेते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। तो वहां पर अद्भुत हुआ, एक बहुत अद्भुत घटना देखी। हम लोग जब एयरपोर्ट पर उतरे सभी जगह पर कीर्तन हुआ, सभी जगह पर भक्तों ने महाराज जी का स्वागत किया, किंतु कोस्टरिका में जैसे हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमें अंदर से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी और लग रहा था कि एयरपोर्ट बाहर भक्तों से भरा हुआ है, किंतु देख तो नहीं सकते थे। तो जैसे ही हम प्लेन से उतर के कस्टम क्लियरेंस में आए तो जितने भी कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा अरे सभी तो आपका इंतजार करें, अब जल्दी चलो बाहर, जल्दी चलो बाहर, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए, उनको रोक नहीं पाएंगे। और जितने भी कस्टम ऑफिसर थे वो भी जोर जोर से हाथ उठा करके हरे कृष्णा करने लगे और किसी ने कोई चेकिंग नहीं की, कुछ नहीं किया और जल्दी से महाराज जी को उन्होंने बाहर निकाला, जाने को बोल दिया। जैसे ही महाराज जी बाहर पहुंचे चारों तरफ से जितने भी भक्त थे उन्होंने महाराज जी को घेर लिया और कीर्तन करने लगे। और जैसे महाराज जी कल वर्णन कर रहे थे कि वहां पर उनकी कथा है, मिलने पर चाहे जान हो, जान पहचान हो भी या नहीं हो, फिर लोग मिलने पर गले मिलते हैं और गले मिलकर के चुंबन इत्यादि करते हैं। तो उन सब ने महाराज जी को पकड़ लिया और महाराज जी को चारों तरफ से घेर लिया और एकदम अलिंगन पास में बांध दिया। और जब तीसरे दिन भी चेष्टा की तो महाराज जी ने रोक दिया, उन्होंने सोचा हम महाराज जी के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन अचरज की बात यह भी थी कि कई ऐसे लोग जो भक्त नहीं थे पता चल सकता था क्योंकि वो लोग धोती कुर्ता नहीं पहने हुए थे और तिलक भी नहीं था, कंकी भी नहीं थी, केवल एयरपोर्ट पर आए हुए थे, वो लोग भी महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि रोने लग गए और सभी चकित थे कि क्यों रो रहे हैं। और जब वो तो स्पेनिश भाषा बोलते हैं, हम लोग बोल नहीं सकते, तो हमने एक दो भक्तों से पूछा ये क्यों रो रहे हैं, तो बोलते हैं कि महाराज जी को देख करके रो रहे हैं कि ये कौन आया है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि जैसे हम इसको देखना चाहते थे बहुत समय से। और सभी लोग महाराज जी के साथ हम लोग फिर जहाँ हमें रहना था वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर लगभग 10 दिन हम लोग रुके, जहाँ महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में भागवत के ऊपर आधारित कर बताया किस प्रकार से ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी और इस प्रकार से पांडव लोग और ये सब भक्तों का तात्पर्य दिखाकर महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन करके बताया कि किस प्रकार सकाम भक्ति, कर्मनिष्ठा भक्ति, संत सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति और किस प्रकार से हम लोग के लिए जरूरी है कि हम इन सब बातों को समझें, जाने, ताकि शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर अपने जीवन को सफल बना, जल्दी से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाए। वर्णन करने के लिए तो बहुत है क्योंकि महाराज जी की जितनी भी कार्यकलाप हैं ये सब अद्भुत हैं, वर्णन करते जाने पर तो उन चीज़ों का अंत नहीं है। तो मैं अब नवीन गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वे और सब चीज़ें बता करके हम लोगों को महाराज जी की कृपा लाभ कराने में सहायता करें और वर्णन करें किस प्रकार से बाकी के विदेश प्रचार में महाराज जी ने अलग अलग देशों में जा कर के भक्तों को उत्साहित किया और सब पर कृपा वर्षण की। हरे कृष्ण।
कोई याद
वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः।